أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد وآل محمد وأجل وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين एक बार फिर درود بھیجے گا محمد وآل محمد محمد وآل محمد سردیار عالم کا انتہائی شکر انتہائی احسان اس نے ہمیں اپنے دین کے ماننے والوں میں قرار دیا دین کی پیروی اور اس کی ہدایت پر چلنے والوں میں قرار دیا دوسرے انسانوں کے بارے میں سوچنا سمجھنا اور ان کی زندگی میں آسانیاں لانا یہ خدا تعالیٰ کے دین کا ایک اہم حصہ ہے انسان خود غرضی میں زندگی نہیں گزار سکتا انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ مل کے زندگی گزار رہا ہوں اور کہیں پر قربانی بھی دے دوسروں کے کام بھی آئے یہ کہ انسان دوسروں کے ساتھ مل کے زندگی گزارے گا تو طاقت بھی کہیں نہ کہیں تقسیم کرنی پڑے گی اور یہ کہ آپ طاقت تقسیم کریں گے کچھ کو طاقت دیں گے کچھ کو نہیں دیں گے اس کو ہم سیاست کہتے ہیں سیاست معاشرے میں طاقت کی تقسیم کا عمل ہوتا ہے کس کو کتنی طاقت ملے گی طاقت دیں گے اختیار دیں گے نہیں دیں گے تو اگر آپ اور میں اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ دین کے اندر معاشرے میں مل کے رہنا ضروری ہے اور معاشرے میں مل کے رہنے کے لیے طاقت کو کہیں نہ کہیں تقسیم کرنا پڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کے بغیر کوئی گزارا ہو ہی نہیں سکتا آپ کو کہیں نہ کہیں اس موضوع میں جانا پڑتا ہے جیسے آپ سیاست میں آتے ہیں تو جہاں یہ ضرورت ہے وہاں یہ چیلنج بھی ہے کیونکہ جیسے آپ طاقت کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں کسی کو طاقت دیتے ہیں کسی سے طاقت لیتے ہیں وہیں پہ سارے چیلنج شروع ہو جاتے ہیں طاقت لوگوں کو اپنے لالچ میں مبتلا کر دیتی ہے پھر یہاں پر آپ کو پورا نظام چاہیے ہوتا ہے کہ طاقت ہو لیکن فساد نہ ہو خدا تعالیٰ یہ تو قبول کرتا ہے کہ انسانوں کو طاقت دیے لیکن وہ یہ قبول نہیں کرتا کہ انسان کو فاسد ہونے دے فساد میں مبتلا ہونے دے سیاست کا دوسرا موضوع یہاں پہ شروع ہوتا ہے اور اس خاطر دین کے ماننے والوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اور یہ قرآن بھی اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ جس کے اندر ہم یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ بھائی یہ مسائل کیوں انجام پا رہے ہیں کیسے انجام پا رہے ہیں ہم ہمیشہ سے عرض کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہم اوپینینس دیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان اوپینینس کو اختیار کر لیں بلکہ ہم لوگوں کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ اوپینین بنانے کا ایک طریقہ آپ کے سامنے رکھا جائے انالیسس کا ایک طریقہ کار آپ کے سامنے رکھا جائے بیان کیا جائے پھر آپ اپنے ذہن سے خود انالیسس کریں آپ اپنی رائے خود بنائیں لہذا اس کے اندر سوال جواب بھی جو رکھے جاتے ہیں وہ اسی لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ آپ اس کے اوپر تنقید کریں کہ بھئی آپ نے جواب یہ بات کیوں کہی پھر آپ کو فرض کریں پروگرام کے آخر تک آتے آتے احساس ہوگا کہ مثلا انہوں نے یہ بات تو کہی ہے لیکن ان کی اس بات میں وزن نہیں ہے ہم ان کی رائے قبول نہیں کریں گے ہم اپنی رائے خود بنائیں گے بالکل صحیح ہے آپ یہ کام کریں اور کبھی ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ نہیں جو انہوں نے کہا تھا وہ صحیح کہا تھا یا مثلا آپ کہیں گے نہیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ جو انہوں نے کہا تھا صحیح کہا تھا یا غلط کہا تھا جو کچھ بھی ہو ہمارے اس پروگرام کا مطلب اوپینین ڈیولپ کرنا نہیں ہے اوپینین ڈیولپ کرنے کی اسکل بنانا ہے اسکل بنانا اثر اور یہ اس پروگرام کا ہدف ہے اب یہ تھا کہ کچھ حالات کو ہم انتخاب کرتے ہیں جو گزشتہ پروگرام کے بعد سے انجام پائے ہوں اور اس میں سے ایک دو کا انتخاب کر کے اس کے اوپر قدرے زیادہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور باقی چیزوں کو سوال جواب کے اندر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دو تین چیزیں ہیں جو اس وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور ایک دوسرے سے کسی حد تک ملی جلی بھی ہیں اور ان کو ہم بیان کرنے کی کوشش میں اس پروگرام کا اصلی وقت لگائیں گے پھر بعد میں جب سوال جواب ہوں گے تو باقی چیزوں کو دیکھیں گے سر فہرست ظاہر ہے آپ سب کے ذہن میں بھی ہے اور ہم نے بھی اس کو لکھا ہوا ہے مثلاً سر فہرست اگر پاکستان کی طرف سے دیکھا جائے تو پاکستان کا جو امریکہ کے ساتھ ایک معاملہ چل نکلا ہے، ٹرمپ صاحب نے سال کی جو پہلی ٹویٹ کی اور اس کے اندر انہوں نے تبصرہ میں پاکستان کو بہت سخت لفظوں سے یاد کیا، جھوٹا کہا، دھوکے باز کہا، اور کہا کہ پاکستان نے ہمیں جھوٹ اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں دیا ہے، ہم نے 33 ارب ڈالر ان کو 15 سال میں دیا، اور ظاہر ہے اس کے اوپر ایک ہنگامہ ہو گیا، جو بھی ہوا بلکہ کم ہی ہوا، ایک ملک کو جھوٹا کہہ دینا، ایک ملک کو دھوکے باز کہہ دینا، اور پھر بھی وہ ملک یہ کہے کہ ہم بھی کچھ سوچیں گے، یہ بہت ہی کمزوری کی علامت ہے بہرحال۔ تو بہرحال پہلا واقعہ تو یہ ہے۔ دوسرا معاملہ ظاہر ہے جو ایران کے اندر واقعات پیش آئے، کچھ مظاہرے ہوئے ہیں، اور وہ مظاہرے کس وجہ سے ہوئے، کیوں ہوئے، آپ لوگ سب لوگوں نے پتہ نہیں کتنا کچھ اس کے اوپر اب تک واٹس ایپ کے اوپر پڑھ لیا ہوگا۔ اب ہم لوگ کم سے کم ایک زمانے میں لوگ گوگل کے محقق تھے، اب سب لوگ واٹس ایپ کے محقق ہیں، تو کافی تحقیق جو ہے وہ انجام پاتی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، پازیٹیو بھی ہے، اس میں ظاہر ہے الٹی سیدھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا پڑھنے کا ایک رجحان تو بنا کہ چلو ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے پڑھ تو لیتے ہیں، اور کافی اچھی چیزیں بھی مل جاتی ہیں اس کے اندر، اور بھی چیزیں، سعودی عرب کے اندر جو حالات پیش آئے، تھوڑا بہت لبنان کا معاملہ بھی، لیکن ہم شروع ایران سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ایران کے اندر مظاہرے ہوئے وہ کیا تھے اور ان کو کس پس منظر میں دیکھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک اور پہلو ہے مثلا دیکھنے کا، یہ بھی ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ میرا اپنی خیال ہے کہ ایسے ہر واقعے میں سب سے امپورٹنٹ کام پہلا کام یہ دیکھنا چاہیے جو اصل میں ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہوتی رہتی ہیں، مثلا امریکی صدر نے بیان دے دیا، اس کے اوپر فرانس والے نے مثلا کچھ کہہ دیا، فرانسیسی نے شاید کہا یا نہیں کہا، امریکن صدر نے تو خاص کر کہا، باقی کچھ یورپین لیڈرز نے کچھ باتیں کی، یہ ساری باتیں، لیکن آپ سب سے پہلے یہ جا کے دیکھیں وہاں پہ جو اصل میں ہوا وہ کیا ہوا، اور وہ جو اصل میں ہوا اس کو دیکھتے ہوئے پھر آپ یہ سوچیں کہ یہ جو ریئیکشن انہوں نے دکھایا ہے یہ کیوں دکھایا ہے، اور کیا مثلا متناسب ریئیکشن ہے۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اصل ہنگامہ بہت بڑا ہوتا ہے، ریئیکشن چھوٹا سا دکھایا جاتا ہے، بعض اوقات اصل ہنگامہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، ریئیکشن بہت بڑا دکھایا جاتا ہے۔ تو ہمیں پہلے تو یہ جج کرنا ہوتا ہے کہ اصل کیا تھا، پھر دوسرا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ریئیکشن دکھایا ہے یہ کیا دکھایا ہے، تیسری بات یہ دیکھنی پڑتی ہے کہ ریئیکشن اور یہ جو اصل ہے ان کی کوئی مناسبت ہے یا نہیں ہے۔ اچھا فرض کریں کہ مناسبت نہیں ہے تو پھر اس نے یہ ریئیکشن دکھایا کیوں تھا، اس طرح سے ہم معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مثلا اصل میں جو ہوا وہ کیا ہوا، جو ابھی تک ہمیں پتہ ہے، اب ظاہر ہے ہم لوگوں کو بھی کچھ چیزیں پتہ ہوں گی، کچھ چیزیں نہیں پتہ ہوں گی، کچھ چیزیں ایرانی ہر جگہ بتا رہے ہوں گے، کچھ چیز دنیا ہر جگہ بتا رہی ہوگی، کچھ چیزیں نہیں بتا رہی ہوگی۔ ابھی تک جو سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ مختلف شہروں میں مختلف مسائل کے نام پر مظاہرے ہوئے ہیں، مثلا مشہد سے شروع ہوا تھا، اور جو مشہد سے مظاہرے شروع ہوئے تھے وہ مہنگائی کے بارے میں، بے روزگاری کے بارے میں، اور لوگوں نے مختلف چیزوں کے اوپر کرپشن کے بارے میں، اس کے اوپر مظاہرہ شروع کیا تھا مشہد سے۔ اچھا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے، بیک گراؤنڈ میں یہ تھا کہ کئی ہفتوں سے، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، انڈے اور مرغے کی قیمت بہت بڑھ رہی تھی، انڈے کی قیمت بہت زیادہ بڑھی ہوئی تھی ایران میں، تو لوگوں کے اندر ظاہر ہے کوئی اگر ایسی کامن یوز کی چیز بڑھ جائے تو پھر تھوڑا سا اثر جلدی پڑتا ہے دماغ کے اوپر، کم سے کم جیب کے اوپر شاید اتنا اثر نہ پڑے لیکن دماغ پہ بہت پڑتا ہے۔ اچھا قیمت کتنی بڑھی تھی، حقیقت یہ کہ مجھے اس کا بہت اچھا اندازہ نہیں ہے، لیکن میں آبزرور ہونے کے ناطے یہ دیکھتا تھا کہ نہیں، قیمت اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ ریئیکشن کم از کم میڈیا کے اندر کافی آیا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمت ٹھیک ٹھاک تھی۔ اچھا میڈیا کے ریئیکشن ہم کیسے جج کرتے ہیں، ہم لوگ نیوز پیپر سے کم جج کرتے ہیں، ہم لوگ معمولاً میڈیا کے ریئیکشن کو ہم لوگ جج کرتے ہیں اس طنز و مزاح سے جو وہ سوسائٹی کر رہی ہے، اس سے صحیح پتہ چلتا ہے کہ مثلاً یہ ایشو کس حد تک پہنچ گیا۔ مثال کے طور پر کچھ آپ جائیں ایرانی معاشرے میں جو طنز و مزاح کی ویب سائٹس ہیں اور ان کے ایپس ہیں، ان کو جا کر اسٹڈی کریں، उन पे देखें कि बस इस इशू के ऊपर कितने लतीफ़े बन रहे हैं, इस इशू के ऊपर लतीफ़ों का अंदाज़ क्या है। तो आपको अंदाज़ा होगा कि भाई ये माशरा कहाँ पर इस मसले को माशरा किस अंदाज से देख रहा है। तो इकोनॉमी से निकल कर मैंटेलिटी में जाए, क्यों बाज़ औक़ात इकोनॉमी इतना बुरा असर नहीं डालती, मैंटेलिटी बहुत बुरा असर डालती है। आपने देखा होगा गुरबत नुकसानदेह नहीं होती, गुरबत का एहसास नुकसानदेह होता है। गुरबत नुकसानदेह नहीं होती, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया के हिसाब से बहुत गरीब हैं, लेकिन अगर हम ऐसी कम्युनिटी में रह रहे हैं जहाँ हमारे जैसे हैं तो वो गुरबत हमें तंग नहीं करेगी। तो गुरबत का एहसास होता है वो कत्ल कर देता है इंसान को, कौमों को मार देता है। तो वहाँ पर मैंने एहसास किया कि नहीं, अंडे के मामले के ऊपर एहसास जो था वो काफ़ी जड़ पकड़ गया था। मसलन एक लतीफ़े लिखने वाले ने लतीफ़ा लिखा, उसने लिखा कि भाई अगर किसी के पास कोई मुर्गी हो जो रोज़ाना 2 अंडे देती हो तो मैं अपनी प्रॉपर्टी से उसका एक्सचेंज करने को तैयार हूँ। तो इसका मतलब ये कि भाई ये मामला जो है वो थोड़ा सा ख़तरनाक हुआ हुआ है, जा कहीं और पहुँच गई चीज़। शुरू वहाँ से हुआ था। 2-3 टॉपिक्स थे जो मैंने बहुत एहतियात से आपके सामने तस्करा किए। 1, महंगाई का इशू। 2, बेरोज़गारी का इशू। 3, करप्शन। करप्शन, अच्छा करप्शन में महंगाई, बेरोज़गारी के इशू, महंगाई के इशू मैंने आपको बताया, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर महंगाई थी और काफ़ी तेज़ी से आगे जा रही थी, अभी भी जा रही है, जिसको आप इन्फ्लेशन कह सकते हैं। दूसरा मसला जो बेरोज़गारी का था, हमारे पास बेरोज़गारी की बहुत सही आदाद व शुमार मेरे ख्याल में नहीं है, मेरा अपने ख्याल है, लेकिन बहरहाल ये कहा जा सकता है कि नौजवानों के अंदर बेरोज़गारी शूट की भी है। अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 30% नौजवान बेरोज़गार है, 30% नौजवान बेरोज़गार है, जो बहुत ख़तरनाक रकम है। अलबत्ता बहुत सारे इलाकों में इससे भी ख़तरनाक हैं, मतलब मुझे मालूम है ऐसे इलाके दुनिया में, मुवालिक ऐसे हैं जहाँ 40% नौजवान बेरोज़गार हैं। अच्छा, अगर किसी सोसाइटी में नौजवान बेरोज़गार इतनी बड़ी तादाद में हैं तो बेरोज़गारी को निपटाने के लिए ये कम रोज़गार के ऊपर आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर आदमी है तो इंजीनियर, लेकिन वो जाकर मिसाल के तौर पर सिगरेट का वो लगा लेता है, खोखा लगा लेता है। अब शायद उसमें कमाई ज़्यादा हो जाती हो, लेकिन ये कि मिसाल के तौर पर बहरहाल वो अपने स्टैंडर्ड से नीचे आ जाता है। तो बेरोज़गारी को निपटाने के लिए कम रोज़गार के ऊपर वो आ जाता है। अब हमें नहीं मालूम कि बेरोज़गारी कम रोज़गारी भी मिला लें तो फिर नौजवानों की रोज़गार का इशू वहाँ पर कितना ख़तरनाक है, लेकिन बहरहाल काफ़ी ख़तरनाक है। तीसरा मसला था करप्शन का। करप्शन में जो बहुत ख़तरनाक काम हुआ, जो आखिर बिल्कुल आखिर में हुआ, वो ये था कि कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स थे वहाँ पर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स जिसके अंदर लोग अपना पैसा रखा करते थे बहुत हाई रिटर्न के साथ, काफ़ी हाई रिटर्न के साथ। अच्छा, उन इन्वेस्टमेंट बैंक्स में बहुत बड़ी तादाद जो थी, नहीं ये जुमला सही नहीं है, काफ़ी बड़ी तादाद से आप थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे इसको, काफ़ी बड़ी तादाद, 1-2 से निकल के मामला, वो बैंक करप्ट हो गया। अच्छा, इस बैंक्रप्सी के अंदर जो इंस्टीट्यूट्स की बैंक्रप्सी थी, इसमें करप्शन नहीं है। बैंक्रप्सी होना करप्शन नहीं होता, वो तो होते रहते हैं, इदारे हो जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में बैंक्रप्सी हो जाना इसका मतलब ये कि नहीं अब कुछ करप्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये इदारे डूब रहे थे तो लोगों को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया था? जो रेगुलेटर था उसने उन इदारों के ऊपर गिरफ्त क्यों नहीं की थी जब ये इदारे डूबने की तरफ जा रहे थे? पब्लिक को टाइमली अवेयर क्यों नहीं किया गया था? तो इस टाइप का करप्शन, और अगर आपके जहन में हो तो 1 साल पहले तकरीबन एक बहुत बड़ा इशू बना था ईरान के अंदर, वो ये कि जो बैंक्स के मैनेजर्स हैं उनकी जो तनख्वाहें हैं और बोनसेस हैं, वो उनके यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स, यानी आप समझ लें कि ये बात जो है वो 1,50,000 और 1,50,000 की नहीं हो रही है, अब ये बातें नजूमी आदाद की बात हो रही है, यानी आप एस्ट्रोनॉमी के अंदर इतने बड़े बड़े नंबर्स आप देखेंगे, करोड़ों की बातें, फिर अरबों की बातें इस तरह से हो रही हैं। अच्छा, अब तुमान की वैल्यू भी आपको पता है ये बहुत कम है, तो उसमें जब आप किसी की बड़ी तनख्वाह देखते हैं तो वो रकम फिर अरबों में होती है, तो वो एक बहुत बड़ा इशू बना था। इस तरह का एक माहौल वहाँ पर था, उसके अंदर मशहद के मुजाहरे शुरू हुए थे, वो मुजाहरे थोड़े और शहरों में भी पेनिट्रेट कर गए थे, उसे और शहरों के अंदर भी लोगों को जरूरत हुई थी, और उन्होंने महंगाई के ख़िलाफ़ ना बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ और करप्शन के ख़िलाफ़ इन्होंने मुजाहरे किए थे। अच्छा, ये मुजाहरे होना मेरा अपने ख्याल है न किसी सोसाइटी के लिए चैलेंज है, न किसी गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है। हाँ ठीक है, मुजाहरे होने चाहिए, अगर कोई बात गलत हो रही है तो मुजाहरे होने चाहिए, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, चैलेंज नहीं है। और चैलेंज इस मामले में ये तो है कि भाई आपके लिए वेकअप कॉल है कि आप कुछ करें पब्लिक के लिए, चूँकि पब्लिक रोड पर आ गई बेचारी इतनी तंग हो गई है। लेकिन गड़बड़ कहाँ पर शुरू हुई? गड़बड़ वहाँ पर शुरू होती है कि अब उसके अंदर कुछ लोग शामिल हो गए जिन्होंने तोड़फोड़ भी करना शुरू कर दी, और न सिर्फ तोड़फोड़ करना शुरू कर दी बल्कि लोगों की जानों से खेलना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले के अंदर मुझे फिर कहूँगा आदाद शुमार बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन मेरा अपने ख्याल है कि कबूल कर चुके हैं कि 25 से ज़्यादा लोग मरे हैं। अलबत्ता माजरत के साथ ये कि हमारे जैसे मुल्क के अंदर 20-25 लोग किसी बहुत बड़े इवेंट में भी नहीं मरते, छोटे छोटे वाक़यात में ही मिला मिलू के 20-25 लोग हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल ईरान जैसी सोसाइटी के अंदर चंद लोग मर जाएं इस तरह से, हाँ ये बात ख़तरनाक है। तो और कुछ जो इवेंट्स मौजूद हैं उसमें ये कि लोगों ने बाकायदा कुछ ग्रुप्स बनाकर 2-3 को आइसोलेटेड पकड़कर उनके ऊपर बाकायदा छुरियों से हमला किया है, जिसमें जो लोग मरे हैं वो बाद वक़्त बहुत वहशियाना तरीके से मारे गए। और कुछ और वाक़यात आपने सब कहीं इधर उधर देख ही लिए होंगे, सुन ही लिए होंगे, लेकिन बहुत वहशियाना भी काम हुए और इसमें हुकूमती इदारों पर भी हमला हुआ। तो साफ पता चल गया था कि मामला अब महंगाई बेरोज़गारी वगैरह का इशू नहीं है। अच्छा, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट भी नहीं है। एक होता है माश के ऊपर, मीशत के ऊपर प्रोटेस्ट, तो मैंने अर्ज़ किया महंगाई पर हो, बेरोज़गारी पर हो, करप्शन पर हो, तो ये इक्तसादी और माशी प्रोटेस्ट है। एक दफ़ा होता है प्रोटेस्ट पॉलिटिकल, यानी आप ये कहते हैं भाई ये हुकूमत गलत है, इस हुकूमत को गिरा दो, मसलन हत्ता आप कहते हैं ये सिस्टम गलत है, सिस्टम को गिरा दो, अगर कोई ये नारे भी लगाए, ये भी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, ये भी पॉलिटिकल। लेकिन जो ये नारे लगाएं वो जाकर दूसरों की जानों से खेलना शुरू कर दें, वो हुकूमती इदारों को आग लगाना शुरू कर दें, अंदर लोग मौजूद लोगों को मारना शुरू कर दें, अब ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, अब इसको हम कह सकते हैं कि ये बलवा है। और बलवा है इसका मतलब ये है कि कोई है जो सोसाइटी के अंदर बलवा मचाकर लोगों में खौफ हरास फैलाना चाहता है, और वो चाहता है कि सोसाइटी के ऑर्डर को डिसऑर्डर में तब्दील करे। अच्छा, हम सब लोग पाकिस्तान के रहने वाले हैं, हम सबको जो यहाँ मौजूद हैं ज़ाहिर अच्छी तरह पता है कि अगर एक सोसाइटी में ऑर्डर डिसऑर्डर में चला जाता है, जैसे कि कराची सालों रहा है, तो फिर यहाँ क्या होता है? फिर ये होता है कि किसी की जान माल महफूज नहीं होती, उस सोसाइटी की ग्रोथ ख़त्म हो जाती है, उस सोसाइटी में एजुकेशन ख़त्म होने लगती है। ये वो ख्वाब है जो बाहर वाले ईरान के लिए देखते रहते हैं। बस तीन लेवल हो गए, मईशत के ऊपर प्रोटेस्ट, इससे किसी को नुकसान नहीं होगा, ये अच्छा है। पॉलिटिक्स के ऊपर प्रोटेस्ट, बुरा नहीं है, चैलेंज होता है इसके अंदर लेकिन बुरा नहीं है। बलवा, हाँ ये वो है जो बाहर वालों की ख्वाहिश है। अब आते हैं इस मसले के ऊपर, ये था, ये असल कहानी थी जो अंजाम पाई, शुरू वहाँ से हुआ, थोड़े सी देर के बाद पॉलिटिकल हुआ, और पॉलिटिकल पे नहीं हुआ बल्कि वो एक्चुअली बलवे के अंदर चला गया। बाहर वाले इससे बहुत खुश हुए और उनकी खुशी बहुत तेज़ी के साथ उन्होंने जाहिर की। मसलन अभी शुरू ही हुआ था कि अमरीकी सदर ने कह दिया कि पूरी दुनिया देख रही है और हम ईरानी कौम को मसलन मुबारकबाद दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, सब ने, इसराइली वज़ीर आज़म ने और सब ने इजहार हमदर्दी, ये वो सब कुछ करना शुरू कर दिया। कितने लोगों पर, कितने लोग रोड पे आए थे? किसी एक भी मुजाहरे के अंदर जो मैंने अभी तक ढूंढा, किसी एक मुजाहरे के अंदर 2000 लोग भी रिपोर्ट नहीं हुए थे, किसी मुजाहरे के अंदर, चाहे मशहद में हुआ, कहीं पर भी मुजाहरा हुआ, जो अभी तक मुझे पता है 2000 बंदे भी रिपोर्ट नहीं हुए थे एक मुजाहरे के अंदर। 200, 300, 400, ज़्यादा से ज़्यादा जो फिगर मुझे याद आता है कहीं पे भी मैंने देखा है रिपोर्ट हुई है, वो 1500 थी। अब मुझसे कोई ये पूछे कि अगर कराची में 5000 लोगों की गैदरिंग हो, इससे सिंध की हुकूमत को कोई ख़तरा होगा क्या? कुछ नहीं होने का। 5000 से मुल्क की हुकूमत को कोई ख़तरा हो जाएगा? कुछ नहीं होने का। हाँ, बलवा तो हो सकता है, बलवा तो होगा, 5000 लोगों को आप अमेजन रोड पे ले आइए और उनके ही जलाना शुरू कर दें, हाँ बलवा हो जाएगा। लेकिन ये सोचें कि ये निज़ाम को कोई ख़तरा हो गया, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस जो कुछ हुआ वो ये हुआ, कुछ लोगों ने बलवा किया। बलवा भी कितना अरसा चला है? मेरा ख्याल में मेन जो बलवा था वो शायद 10 दिन चला है, सब मिलाकर 2-2.5 हफ्ते की कहानी हुई है, 2-2.5 हफ्ते की कहानी हुई। जो रिएक्शन हुआ वो क्या हुआ, वो रिएक्शन पता नहीं कहाँ तक पहुँच गया। हत्ता मैं एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि अमेरिका में, अमेरिका की जो नुमाइंदा अक़वामे मुत्तहिदा में है, उसने सलामती कौंसिल का एक इजलास भी तलब करने की कोशिश की थी कि सलामती कौंसिल का इजलास तलब कर ले। कितने लोगों के मुजाहरे के ऊपर? 1,500 लोगों के मुजाहरे के ऊपर। सही है, इसका मतलब क्या है? अब यहाँ से हम थोड़े से रिजल्ट्स निकालते हैं। अगर ये अमेरिका, इसराइल, यूरोप इतना उछल रहे हैं 1,500 लोगों के मुजाहरे के ऊपर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनकी बेबसी और इनकी कमज़ोरी अपने हद को पहुँच गई है। अगर ये थोड़े से भी ताकतवर होते तो इतने से वो, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि सालन के प्याले में उबाल आने पर, इतना ना शोर मचाते ये लोग। 1,500 लोग रोड पर आए और अमरीकी सदर चिल्ला रहा है, इसराइली वजीर आजम बोलता है, यूरोप के कुछ लोग बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इनकी ताकत का एंड यहाँ पर है, अब इनकी ताकत का एंड यहाँ पर है। वरना इनको चाहिए था ये रुकते, इसको थोड़ा सा पंप करते, इतना पंप करते कम से कम उस पोजीशन पे तो आते जो 8-10 साल पहले आए थे ये लोग, वहाँ तक भी नहीं। इतने से के ऊपर इतना ज़्यादा उछलना शुरू कर दिया और उसमें कोई जान भी नहीं निकली, वो मामला ख़त्म हो गया। तो पहली बात तो जो मुझे समझ में आई वो ये कि जो एंटी ईरानी लॉबी थी, ज़ाहिर है कि सऊदी अरब का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ तो वो बार बार वो तो हमेशा शामिल है ही इसके अंदर, ये इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ताकत अब जो ईरानी माशरे के ऊपर असर डालने की है वो 1,500-2,000 से ज़्यादा की नहीं रही है। ये एक तो इनका ये मसला। दूसरा मसला ये है कि इससे जो मैं एक और नतीजा निकालूंगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद का, दूसरी बात जो मुझे समझ में आती है वो ये कि जिसने भी ये कोशिश की है, साफ नज़र आ रहा है इस कोशिश के अंदर पुख्तगी नहीं है, इसके अंदर कोई जान नहीं है, कोई ताकत नहीं है इसके अंदर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ईरानी माशरे के अंदर असर और रसूख रखने का जो इनका ख्वाब था वो ख़त्म हो चुका है, अब इससे ज़्यादा असर रसूख नहीं रख पाएंगे ये लोग। बस एक तरह से बाहर वालों की कमज़ोरी नज़र आ रही है कि वो इतने डेस्परेट हैं कि अगर इतना सा भी कोई वाक़या होता है तो उसके ऊपर इतना बड़ा रिएक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वेट करते थोड़ा सा बड़ा होता फिर ये रिएक्शन देते। अपनी सुबकी करवाई इन्होंने अपनी कमज़ोरी की वजह से। दूसरी भी जो इनकी जो कमज़ोरी नज़र आ रही है मुझे कि ईरानी माशरे के अंदर एक ज़माने में इनकी पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, जो अहमदीनेजाद के टेन्योर के अंदर आपको याद होगा और कितना बड़ा इन्होंने हंगामा बर्पा कर लिया था, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को भी लाने में कामयाब हो गए थे, महीने से ऊपर वो सारा हंगामा चला था। अब जो इनकी ताकत है वो यहाँ पर आ गई है, इसका मतलब है ईरानी माशरे के अंदर इनकी पेनिट्रेशन तकरीबन निल पर है, अब यहाँ से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ जो मैं एक और बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ और वो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और उसको हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड के साथ अर्ज़ करने की कोशिश करते हैं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, आप किसी मौके से फ़ायदा उठाना जिसको हम लोग कहते हैं, आप कब मौके से फ़ायदा उठाने के लिए आप किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं? दो तरह से। अच्छा, एक दफ़ा आप ये कहते हैं कि पहले मुझे वो टाइम नज़र आए जब मैं मौके से फ़ायदा उठाऊँगा, ठीक है, एक दफ़ा ऐसा होता है। मिसाल के तौर पर हम में से बहुत सारे लोगों के जहनों में बहुत सारी किताबें घूमती रहती हैं जो हमने सोचा है कि कभी फुर्सत मिलेगी तो पढ़ेंगे। अच्छा, वो फुर्सत कभी नहीं आती, वो कभी नहीं आती। इंशाल्लाह मैं हर रोज़ कुरान करीम इतना पढ़ा करूँगा। अच्छा, बदकिस्मती से वो जितना मैं चाह रहा था किसी अच्छे टाइम में पढ़ूँगा, वो अच्छा टाइम नहीं आ रहा। एक तो कैटेगरी ऐसे लोगों की होती है जो कहते हैं जब वक्त आएगा इंशाल्लाह, वो कभी नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरी दफ़ा हम ये कहते हैं कि ज़रा सा मुझे मौका मिल जाए, ठीक है, जब वो अच्छा वक्त आएगा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सख्ती थोड़ी सी कम हो जाए ना बस फिर मैं अपना काम कर दूंगा। ये दूसरी कैटेगरी होती है, कहती है सख्ती थोड़ी सी कम हो जाए मैं अपना काम कर दूंगा, दो हो गए। अच्छा, एक और कैटेगरी होती है, वो ये कहता है कि जब हालात ख़राब होते हैं ना तब काम करने का सबसे अच्छा वक्त होता है। वो कैसे होता है? तो हम यहाँ पर एक स्ट्रेटजिस्ट की ज़बान से एक जुमला सुनते हैं, अब स्ट्रैटेजिस्ट ये कहते हैं हमेशा खतरे को अपॉर्चुनिटी में तब्दील करो। जब भी थ्रेट आए थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर दो, ठीक है। अच्छा, स्ट्रैटेजिस्ट का काम यही है कि वो क्या करे, वो ये देखे ये थ्रेट है, ये थ्रेट है, यहाँ से मुझे एक ज़र्ब लगने वाली है, इसको मौके में कैसे तब्दील करूँ, इसको अपने लिए कैसे पॉइंट बनाऊँ। अच्छा, इसकी मिसाल कैसे देंगे, इसकी मिसाल ऐसे देंगे जैसे फ़र्ज़ कर लीजिए कि दुश्मन ने कौम के ऊपर हमला कर दिया, जैसे ही इस कौम के ऊपर हमला किया अब ये जनाब ये तो ख़तरा हो गया। अच्छा, इस कौम ने देखा कि भाई हमारे अंदर बहुत सारी पॉइंट्स के ऊपर इख्तलाफात थे। अच्छा, अब लोगों से ये नहीं कहते कि दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला किया हुआ है, हमें क्या करना चाहिए, मिसाल के तौर पर हमारे ऊपर हमला हुआ है तो हमें तैयारी करनी चाहिए, वो इस तरह से नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं और उनको ललकार देते हैं और कहते हैं देखो दुश्मन ने तुम पे हमला किया है, अब बहादुरी का वक्त आया है या नहीं आया, अब इत्तेहाद दिखाने का वक्त आया या नहीं आया। सही, जो ख़तरा था उसको आपने किस में तब्दील कर दिया, अपॉर्चुनिटी में। सही है, आपने वो खुतबा यकीनन सुना होगा या उसके बारे में सुना होगा कि जब मौला अमीर मोमिनीन का लश्कर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले ज़्यादा लोग अब आएंगे नहीं, ठीक है, लेकिन चूंकि शिमकान है थोड़ी सी हवा में ठंडक भी है, वैसे ठंडक नुकसानदेह नहीं होगी इंशाल्लाह, लेकिन अगर आपके लिए जहमत ना हो तो थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले आइएगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद محمد باجل ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد باجل فرج ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد باجل فرج تھریٹ کو اپرچونٹی میں تبدیل کرنا۔ تو اب امیر مومنین کی خطبے کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، مولا کا لشکر پانی کے لیے پہنچا، لشکر شام نے پہلے سے قبضہ کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا ہم پانی نہیں دیں گے۔ اب جب امام کا لشکر وہاں پہنچا ہے، ظاہر ہے کوئی ماڈرن ٹائمز نہیں ہے، پانی آپ کو نہر سے ملے گا تو ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا تو بھوکے مر جائیں گے، پیاسے مر جائیں گے، گھر تھوڑی نزدیک ہے۔ امام نے خطبہ دیا اور فرمایا تمہارے سامنے دو راستے، لب لبابی، تمہارے سامنے دو راستے ہیں، شجاعت دکھاؤ، شمشیریں نکالو، دشمن پہ حملہ کرو، پانی تک پہنچ جاؤ، ورنہ پیاسے مرو گے۔ اچھا، امام نے یہ لشکر اب یہ خطبہ دے کر اپنے لشکر کو کیا کر دیا، چیلنج دے دیا۔ اب جب ان کو چیلنج ملا، ان کی جو کھوئی بھی کم ہوئی بھی چھپی بھی طاقتیں بھی تھیں وہ بھی سامنے آ گئیں، انہوں نے جا کے ایک دم حملہ کیا اور پانی کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اچھا، اب یہ موقع کیا موقع ہے، یہ موقع ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک تھریٹ آتا ہے تو آپ اس تھریٹ کو، خطرے کو چیلنج بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں میں اس کو ڈیل کروں گا، اور چیلنج بنانے کے بعد جب آپ اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اب آپ کے لیے یہی چیز جو خطرہ تھی کیا بن گئی، موقع بن گیا، اپرچونیٹی بن گئی۔ کس بات کی اپرچونیٹی بن گئی، اپنے لشکر کو آپ نے متحد کر لیا، اس کی اچیومنٹس میں اضافہ کر لیا، اس کی ہمت کو اور بڑھا دیا۔ یوں لگ رہا ہے جیسے ایران کا نظام انقلاب اسلامی اس کام کا ماہر ہے، یہ اس کام کے ماہر ہیں، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی اتنا سا بھی عقل مند صدر ایسا نہیں آ پا رہا امریکہ کا کہ جو اس بات کو سمجھ لے کہ یہ سسٹم اس کام کا ماہر ہے۔ یہ تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہ بیوقوف صدر آ رہے ہیں سارے، جن کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ایرانی اس کے ماہر ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیے کتنا عجیب کام ہوا۔ یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں چھوٹی سی ایک بات عرض کی کہ بھائی وہ کس طریقے سے آپ تھریٹ کو چیلنج لے کر اپرچونیٹی بنا لیتے ہیں۔ اب سوچیے گا، امریکہ عراق کے اندر آیا، تھریٹ تھا یا نہیں تھا؟ مائٹی تھریٹ، دسیوں ہزار کا لشکر لے کر امریکہ عراق کے اندر آیا، ایرانیوں نے کیسے فیل کیا؟ انقلاب نے اس کو تھریٹ لیا، اس تھریٹ کو چیلنج لیا، چیلنج لینے کے بعد انہوں نے ان کا مقابلہ کیا، مقابلہ کرنے کے بعد ایرانی چلے گئے، اب عراقی کس کے انڈر انفلوئنس آ گئے، ایران کے۔ फिर अमेरिकन्स ने खुद जाने के बाद आईएस को भेजा, आईएस को भेजा तुम जाओ इराक के ऊपर। अच्छा, सबको मालूम था आईएस इराक के लिए तो आइए आइए, असल में ईरान के लिए आइए। वो ईरान के इराक के नाम पर इराक में कूदे, उनका असली टारगेट ईरान बन रहा था। उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद आईएस का मुकाबला करने के लिए अपनी ताकत का फिर इजहार किया, और ज़्यादा कंट्रोल इराक के ऊपर हो गया। यानी पहले अगर छुपे बंदों था तो अब खुले बंदों हो गया। अच्छा, यही काम उन्होंने सीरिया में किया, आईएस को भेजा, बशार अल-असद की हुकूमत बिल्कुल एंड के ऊपर आ गई, ये हो गया थ्रेट। अब एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ने, सिर्फ ईरानी हुकूमत ने नहीं बल्कि पूरे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ने इस थ्रेट को चैलेंज लिया और कहा कि हम इस चैलेंज का मुकाबला करेंगे। वो गए सीरिया के अंदर, आईएस को निकाल दिया, अब पूरा सीरिया खुले बंदों एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का एक मेंबर है। सही है, बल्कि अब रशिया भी ईरान के साथ है, टर्की भी ईरान के साथ है, कतर भी घूम घुमा के ईरान के साथ है, ओमान भी कहीं ना कहीं ईरान के साथ है। ये हम कह रहे हैं थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में चेंज करना। अब एक बात मुझे समझ में आ रही है, अमेरिका का बेवकूफ़ निज़ाम जितना बड़ा थ्रेट लेकर आता है, ये इसको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं अपने लिए और उससे फ़ायदा उठा लेते हैं। और ये जो छोटा मोटा सा इन्होंने ड्रामा किया था, ये तो कोई इसे कहते हैं मसला ही नहीं था। अच्छा, अब इस सिस्टम इस एक थ्रेट से क्या क्या फ़ायदे उठाने की कोशिश कर रहा है, ये भी देख लेते हैं आखिर में पहुँचते हुए इस मौजू पर कि भाई ये एक थ्रेट था ना, इन्होंने छोटा सा एक थ्रेट डाला था, उसको पंप करने की कोशिश की, पंप हुआ नहीं, उसको बैलून किया इंटरनेशनल लेवल पर, वो बैलून नहीं हुआ, किसी ने उनका साथ भी नहीं दिया, बात भी नहीं हुई, मामला ख़त्म हो गया। लेकिन सिस्टम ने इससे भी फ़ायदा उठाया, इससे भी क्या फ़ायदा उठाया, एक बहुत बड़ा फ़ायदा, रूहानी की हुकूमत बिल्कुल ऑब्वियसली रहबर मुअज़्ज़म की बहुत मुर्द हिमायत हुकूमत नहीं है। सबको मालूम है कि कॉन्फ्लिक्ट है, रहबर मुअज़्ज़म कुछ फरमाते हैं, रूहानी मुअज़्ज़म कुछ फरमाते हैं, और ये मामला कहीं ना कहीं सामने आता है। तो मसलन बहुत सारी चीज़ें, मैं उन जुमलों को नहीं दोहराना चाह रहा, जहाँ इन्होंने एक बात कही और रहबर मुअज़्ज़म ने कुछ ही दिनों की बात कहा, ये क्या कहा, ये तो कोई ये बात ही गलत है, असला इस तरह की चीज़ें हुई हैं वहाँ पर। अच्छा, ये सबको मालूम है कि रहबर मुअज़्ज़म अमरीका के साथ मुज़ाकरात पर खुश नहीं थे, लेकिन चूँकि रूहानी को अवाम लेकर आए थे और रूहानी की हुकूमत ने इसको एजेंडा में डाला था कि हम मुज़ाकरे करेंगे, तो उन्होंने मुज़ाकरे की इजाज़त दी थी, अलबत्ता लाइंस बना दी थी कि इन लाइंस के अंदर रह के मुज़ाकरा होगा। ये सारी बातें हुई थी। ये जो मुजाहरे हुए हैं, इन मुजाहरों ने रूहानी की हुकूमत के दावों को लोगों के सामने बरमला कर लिया, ये बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। यानी रूहानी ने लोगों को ख्वाब दिखाए थे वो ये कि अगर हमने मुज़ाकरात कर लिए ना, और अगर हमारा एग्रीमेंट हो गया, तो फिर देखना हम ईरान को क्या जन्नत बनाएंगे। हो गया मुज़ाकरात, हो गया एग्रीमेंट, नतीजे में क्या मिला, अब लोग बिल्कुल क्लियर हैं कि हाँ ये ख्वाब हैं सारे, अमेरिका से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अमेरिका ने मुज़ाकरात भी किए, एग्रीमेंट भी किया, छः मुल्कों के मुज़ाकरात थे, एक मुल्कों के मुल्क के मुज़ाकरे भी नहीं थे। सबको करने के बाद अमेरिका ने अपने मुज़ाकरात के वादों को पूरा नहीं किया, ईरान को इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम के अंदर आने की इजाज़त नहीं दी, जितनी डील्स होने चाहिए थी उनको उस तरीके से अंजाम नहीं दिया। सही है, ये सब ना करके अमेरिका ने अपने आप को बिल्कुल लोगों के सामने खोल के रख दिया। और मैंने अर्ज़ किया कि वो रूहानी साहब जो लोगों को इन तमाम अमेरिका की हिमायतों के वादों पर लेकर आ रहे थे, अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि इनके जाने से पहले ये सारे वादे सामने आ गए कि हाँ भाई ये रिज़ल्ट है जो है। अच्छा, इससे हम अपने पाकिस्तान के मामले को भी बहुत आसानी से देख सकते हैं, जो अभी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो मेरा अपने ख्याल है कि ईरान का जो भी इशू था उसमें शुरू से जान नज़र नहीं आ रही थी, थोड़ा सा पंप किया गया था, एंड बहुत ही आसानी से हो जाना था, पता था कि दो चार दिन में, दो ज़्यादा हफ्ता दस दिन में ख़त्म हो ही जाएगा, वो हो गया है, फ़ायदे उठाने के लिए रह गई हैं। हाँ, एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी सामने है इन लोगों के, वो इनको निपटाना है, और वो मैं भी मौका से फ़ायदा उठाकर इसको आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। कई साल से مراجع تقلید ایران کے اندر مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں مسلسل کہ ایران کا بینکنگ سسٹم سود پر مبنی ہے. ایران کی مراجع تقلید مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایران کا بینکنگ سسٹم سود پر مبنی ہے. یہ لوگ اس بات کو اعلان کر رہے ہیں. اور مثلا آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی جیسے لوگ برملا دسیوں دفعہ کہہ چکے ہیں, جہاں تک مجھے احساس ہے, جو میں نے کئی دفعہ تو میں نے بھی سنا ہے, کہہ چکے ہیں کہ ہاں یہ سود پر مبنی ہے, اس سے لوگوں کی زندگی میں بہتری نہیں آئے گی. صحیح ہے. اچھا, اس سسٹم کو تبدیل کرنے کا کوئی خاص ارادہ حکومت کی طرف سے ظاہر نہیں ہو رہا تھا, ابھی تک ارادہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا. ان مظاہروں نے ایک کام جو کیا ہے وہ یہ کہ اب شاید حکومت کو یہ گراؤنڈ دے دے مجبوری کی وجہ سے کہ بھائی تمہیں اس کے اوپر سوچنا پڑے گا کہ یہ اس طریقے سے چلنے والا نہیں ہے, اور سود پر مبنی کیسے ہے اور کیوں مبنی ہے. اور مثال کے طور پر ایک عام آدمی فوراً یہ سوچ سکتا ہے کہ بھائی نظام تو بہرحال ڈرائیور معظم کے سائے میں ہی چل رہا ہے, تو کیوں انہوں نے اس کو آ کر تبدیل نہیں کر دیا, اور کیسے تبدیل ہونا چاہیے تھا اس کا, میں اس کی تفصیل میں فی الحال نہیں جا پاؤں گا. صرف آپ کو اتنا عرض کروں گا کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو حکومت کے براہ راست اختیار میں ہوتی ہیں. رہبر معظم کی ایک نگرانی ہوتی ہے, سرپرستی ہوتی ہے, جہاں چاہیں دخالت دے سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ڈائریکٹ انفلوئنس ہوتا ہے وہ حکومت کا ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر آپ اس کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جو بجٹ اناؤنس ہوتا ہے, بجٹ کا بہت بڑا ایک پرسنٹیج, اب میں اس کو ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتا, بعض لوگ 90% سے اوپر کہتے ہیں, لیکن بہرحال بجٹ کا ایک بہت بڑا پرسنٹیج صرف حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے, حکومت اسے خرچ کر رہی ہوتی ہے اور باقی دوسرے ادارے اس کے اندر دخالت نہیں کر رہے ہوتے. ہاں, بجٹ طے ہوتا ہے پارلیمنٹ کے ذریعے سے, لیکن بہرحال خرچ کرنا اور اس کے اوپر نگرانی کرنا وہ حکومت کا کام ہوتا ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے اختیار میں ہوتی ہیں, اس کے ذریعے سے انجام پا رہی ہوتی ہیں, اور بینکنگ سسٹم بھی ان چیزوں میں سے ایک ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اوور نائٹ رہبر معظم کہیں یہ چینج تو یہ چینج ہو جائے گا, نہیں, اس کے لیے بہت ساری چیزیں درکار ہیں. اور یوں لگتا ہے کہ ابھی بھی سسٹم کے اندر وہ کمزوری موجود ہے جس کی وجہ سے اقتصادی حالت اچھی نہیں ہو پا رہی ہے. یہ مظاہرے اسپیسیفکلی چونکہ ان باتوں سے شروع ہوئے تھے, لہذا مجھے لگتا ہے بہت اچھا اپرچونیٹی دیں گے ان کو کہ اس کے اوپر ریویو کریں اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. میں جلدی سے دوسری ٹاپک پہ آتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دوسرا ٹاپک جو میں اس وقت یہاں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو جو دھمکی صدر ٹرمپ نے سال کے پہلے پیغام کے اندر ٹویٹر کے میسج کے اندر دی. میں خود ٹویٹر فیس بک استعمال ہی نہیں کرتا, لہذا مجھے اس کی بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز نہیں پتہ ہیں, لیکن ہاں اتنا مجھے پتہ ہے کہ یہ آج تک کسی امریکی صدر کیا دنیا کے کسی بھی صدر وزیر اعظم نے ملک کی سیاست اس طرح ٹویٹ پہ اعلان نہیں کی تھی جس طرح سے یہ امریکن صدر کر رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ امریکہ میں معتقد ہیں کہ ہمارے ملک کا بہت بڑا ایک مسئلہ حل ہو جائے گا اگر صدر ٹویٹ کرنا بند کر دے, چونکہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, یہ صبح کو اٹھتا ہے اس کے موڈ میں کیا ہوتا ہے, اس کے دماغ میں کیا ہوتا ہے, اور یہ دھڑ دھڑ فائرنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا, صدر ٹرمپ کی شخصیت اس وقت جس جگہ پر ہے, کم سے کم مثلاً 30 سال سے اوپر تو مجھے بھی ہو گئے ان چیزوں کو تھوڑا بہت دیکھتے ہوئے, میں نے تو آج تک کبھی امریکی صدر کو اتنے گری ہوئی جگہ پہ نہیں دیکھا تھا. ہاں, بہت بری جگہیں آئی ہیں, مثلاً اگر مثلاً اسی 25-30 سال کا سوچیں تو بل کلنٹن کا ایک اسکینڈل آیا تھا, وہ ایک پرسنل ان کی زندگی کا اسکینڈل تھا جو بہت گندی جگہ تک پہنچ گیا تھا, اور اس نے بہت زیادہ شرمندگی کا سبب بنا لیا تھا. لیکن اخلاق کی پستی ایک چیز ہوتی ہے, عقل کی حماقت ایک اور چیز ہوتی ہے. اب جو معاملہ رہا ہے وہ صرف اخلاق کی پستی کا نہیں ہے, اس میں بھی یہ رچ ہیں, اس میں بھی یہ بہت غنی ثابت ہوئے ہیں, لیکن اب معاملہ عقل کی حماقت کا ہے کہ جس لیول پر ان کی حماقتیں چل رہی ہیں اس کو دیکھ کر واقعاً یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ملک کا صدر اس جگہ پہ آ سکتا ہے کہ اس آدمی کے بارے میں نفسیات دانوں نے اپنے تجزیے دینا شروع کر دیے ہیں. آپ نے بھی شاید ایک دار دیکھا ہوگا کہیں واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر ویڈیو کلپس کے اندر 18-20 نفسیات دان اپنی رائے دے رہے ہیں کہ بھائی یہ امریکہ کے لیے نقصان دہ انسان ہے, اس کو یہاں سے ہٹا لو वरना ये मुल्क का बेड़ा गर्क लगा देगा। अच्छा, बात समझ में भी आ रही है कि जो जिस तरह से वो डील कर रहा है, वाकई समझ में नहीं आ रहा कि एक मुल्क के सदर को इस जगह तक पहुंचना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बदतरीन सूरत में सामने आ रही हैं। मसलन शख्स खुद पसंदी की लीडर की हद में जाकर एक लिमिट होती है। हर इंसान खुद पसंद होता है, कौन अपने आप को पसंद नहीं करता। हर आदमी अपने आप को बेहतर देखना चाहता है, दूसरों की तारीफ सुनना चाहता है, कमज़ोरियाँ होती हैं हर इंसान के अंदर। लेकिन लीडर्स की सतह पर जाकर, वो भी अमेरिका के सदर की सतह पर जाकर खुद पसंदी का इतना भूखा हो जाए इंसान, ये ज़रा कम हुआ था। लेकिन इनका मामला जो है वो बहुत ही ख़राब जा रहा है। तो इनकी शख्सियत जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अंडर क्वेश्चन जा चुकी है। अलबत्ता इससे पहले कि मैं जाऊँ, एक और सवाल कर लेते हैं, इनको सिस्टम लाया क्यों है फिर? अच्छा, बज़ाहिर कोई भी साथ नहीं है, मतलब मीडिया वो इनके ख़िलाफ़ है, एडमिनिस्ट्रेशन में फ़र्ज़ कर लीजिए खुफिया इदारे वो इनके ख़िलाफ़ हैं। अच्छा, उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी अमेरिका की, मिसाल के तौर पर क़ज़ाइया जुडिशरी, वो इनके ख़िलाफ़ है, सब इनके ख़िलाफ़ हैं, लाया कौन है फिर से? तो बहुत सादा सी बात समझ में आ रही है कि एक क्लास अगर किसी के बारे में ये गुमान करें कि हाँ वो लाए होंगे, तो वो अमरीका के दौलतमंदों की क्लास है। हाँ, उसके बारे में गुमान कभी यह है कि वही लाए होंगे। तो मिसाल के तौर पर जो अभी टैक्स रिफॉर्म हुआ है, उस टैक्स रिफॉर्म में जो टैक्स ब्रेक मिला है वो सबसे अमीर क्लास को, जो मुझे अभी तक याद आ रहा है, 19% से ज़्यादा का ब्रेक मिला है, और जो लोएस्ट क्लास है उसको जो ब्रेक मिला है वो 0.1% है। हाँ, ये समझ में आता है कि जिस क्लास का फ़ायदा होता है वही क्लास ज़ाहिर लाई होगी इसे। तो जो अमेरिका की रिच क्लास है वो इनको लाई होगी, इसकी सेंस बनती है, बाकी किसी की सेंस नहीं बनती। फिर भी एक सवाल बाकी है, सिस्टम क्यों लाता है ऐसे लोगों को? किसी और तरीके से भी तो कर सकता था। अच्छा, अगर ले आया था तो इतना बेइज्जत करने की क्या ज़रूरत है? थोड़ा सा इज्जत बचाओ। तो मिसाल के तौर पर हर रोज़ उसके बारे में एक मस्खरा आ रहा है, हर रोज़ एक लतीफ़ा आ रहा है, हर रोज़ एक ड्रामा वो खुद कर रहा है और कोई उसको कंट्रोल भी नहीं कर रहा। मतलब किसी ने कहा, मैंने जैसे अभी अर्ज़ किया कि किसी ने कहा कि भाई हमारे मुल्क की बहुत बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी, इससे को ट्वीट करना बंद कर दे, तो कोई तो कंट्रोल करे ना, इसे कंट्रोल भी नहीं कर रहा कोई। तो मुझे यूं लग रहा है कि एक्चुअली प्लान ये है, जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि इनको लाया गया है, बहुत सारे गंदे फैसले हैं जो रिच क्लास अमेरिका में करना चाहती है, बहुत सारे गंदे फैसले हैं वो बड़ी क्लास करना चाहती है। उसको पता है एक नॉर्मल मेंटालिटी का इंसान ये फैसले नहीं करेगा, वो इनको लेकर आए, उस सारे गंदे फैसले इनके ज़रिए से करवा लेंगे। मसलन मिन जुमला, जैसे अभी यरूशलम का आपने फैसला देखा कि उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को, मैंने सोचा भी था कि इसको मैं टॉपिक में फ़िलहाल ना लाऊं और इसको किसी और टाइम पे ले आऊँगा, लेकिन अब बीच में आ ही गया, लिकिन टाइम कम है, लिहाजा हम इसको ज़्यादा टच नहीं कर पाएंगे, इसको बाद में किसी टाइम पर रखें, वरना ये पूरा एपिसोड इसके ऊपर डिमांड कर रहा होगा। ये जो फैसला था इनका कि इन्होंने यरूशलम को कैपिटल बनाया अमेरिका का, किसी अमेरिकन सदर ने, अमेरिकी सदर ने ये काम नहीं किया था, उनको पता था इसके नतायज क्या होंगे। अच्छा, ये लगता है कि फारिगुल बाल, जो करना है करवा लो। हर तरफ से मुझे लग रहा है इस बंदे खुदा को इस तरह से रखा हुआ है कि चंद लोग हैं जो इसके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, मिन जुमला इसका दामाद, जो मुझे समझ में आता है वो लोग हुकूमत कर रहे हैं, जो करवाना है इससे करवा लो। और एंड ये होगा कि सारे गंदे काम करवाने के बाद हर तरफ से इसको गालियां पड़ रही होंगी, और गालियां पड़ने के बाद ये कहा जाएगा कि भाई असल ये आदमी सिस्टम का था ही नहीं, ये आदमी बाहर से एक आ गया था, सिस्टम की एक गलती थी जो ऐसे एक बंदे को लेकर आया था, सारे गलत फैसले इसने इंडिविजुअली किए हैं और इसमें सिस्टम की कोई गलती नहीं है। मुझे लगता है कि ये लोग ये चाहेंगे, लिहाजा न FBI इसके साथ है, न जुडिशरी इसके साथ है, न पब्लिक की कोई ख़ास हिमायत इसके साथ नज़र आ रही है, और ये अकेला चलता हुआ इन सारे कामों को अंजाम देता नज़र आ रहा है। बहरहाल इसने पाकिस्तान को धमकी दी, पाकिस्तान के बारे में कहा कि ये इमदाद को रोक लेंगे। अच्छा, मेरा अपने ख्याल है बहुत अच्छा हो कि जो कह रहा है ये कर ले, मेरा अपने ख्याल है कि ये जो कह रहा है कि हम इमदाद रोक लेंगे, मैं कहूँगा ये बहुत बड़ा एहसान हमारे मुल्क के ऊपर ये करेगा कि रोक लें। अच्छा, उसके बाद मैसे किसी ने यहाँ पे मुझसे कहा कि भाई अगर ऐसे हालात में चाइना ने भी रोक लिया तो क्या होगा, कि भाई ठीक है अमेरिका है वो तो वो चलो शायद रोक ले, चाइना तो दे रहा है ना, अगर चाइना भी रोक ले तो क्या? तो मैं अपने दिमाग से सोचते हुए कहूँगा कि मैं प्रेफर करूँगा कि वो भी रोके, वो भी रोक ले। क्यों? पाकिस्तानी एक दफ़ा अपने पाँव पे खड़े होने की तो सोचें, सोचें तो सही। आखिर इस कौम के पोटेंशियल को पूरी दुनिया मानती है कि भाई कुछ है यहाँ पर। सही है, अगर इस कौम के अंदर इतना पोटेंशियल है कि पूरी दुनिया इसको तस्सीम करती है कि यहाँ पे कुछ है, तो इसको एक्सप्लोर क्यों ना किया जाए? हमारे साथ मुश्किल क्या है? हमारे साथ मुश्किल ये है कि जो जहाँ बैठा है वो अपने लिए बैठा है, चाहे वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हो, सब अपने अपने लिए बैठे हैं। जब अपने अपने लिए बैठे हैं तो चाहे IMF से इमदाद आएगी तो वो एक ख़ास क्लास है उसके पास जाएगी, वो उसे लूटेगी खसोटेगी, मामला ख़त्म। अगर डिफेंस के नाम पे एक इमदाद आएगी वो एक ख़ास क्लास है उसके पास जाएगी, वो उसे ये लूटेगी खसोटेगी, मामला ख़त्म हो जाएगा। और सारा बोझ किसको उठाना है? बोझ इस पब्लिक ने उठाना है। तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा है कि जितने इमदाद देने वाले हैं सब बंद कर दें, सारे इमदाद देने वाले इमदाद बंद कर लें। अच्छा, कोई मुमकिन है मुझसे कहे कि भाई आप लोगों को पता ही नहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, उसके बाद मुल्क बैंकक्रप्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जानने के बाद मैं कहूँगा मेरा अपने ख्याल है बेहतर है कि हो जाए, बेहतर है कि हम इन तमाम मसाइल से गुजर जाए। क्यों? मुझे यकीन है कि अगर ये कौम इस मुसीबत से बाहर आ जाए कि जो लुटेरापन यहाँ पे हो रहा है ये लुटेरापन ख़त्म हो जाए, तो इस कौम के पास मुकावमत के लिए और मुकाबले के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कोई ऐसी मुसीबत आने वाली नहीं है। हम कौम होने के एतबार से, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, शायद ये थोड़ा सा सख्त लगे, कौम होने के एतबार से ईरानी हमसे कहीं ज़्यादा अय्याश हैं, कहीं ज़्यादा अय्याश हैं। लेकिन जब कौम होने के नाते वो मैदान में आए और उन्होंने अपनी अय्याशियों को छोड़कर मुकाबले का रास्ता इख्तियार किया, तो आज उनकी इज्जत और सरबुलंदी कहाँ पहुँची हुई है? पाकिस्तानी इससे कहीं ज़्यादा मेहनती हैं, पाकिस्तानी इससे कहीं ज़्यादा जफाकश हैं। तो अगर अल्लाह करे कि वो टाइम आए कभी कि पाकिस्तानी कौम अपनी इज्जत और सरबुलंदी के नाम पर मैदान में उतर जाए, ये क्या देंगे हमें? ये अमेरिका ये कह रहा है, इसने 15 साल में, अमेरिका के सदर कहता है 15 साल में $33 बिलियन दिए। पता नहीं, या तो मेरी अकल बहुत ही नाकस है या मुझे ये लोग बेवकूफ़ बनाने के माहिर हैं, वरना इंसान अगर थोड़ा सा उंगलियों पे बैठ के गिने ना, तो जो पाकिस्तान ने लूज़ किया है वो $33 बिलियन तो कुछ भी नहीं है, पीनट्स है। फिर जो पाकिस्तान ने लूज़ किया है इन लोगों की इन हिमाकतों और बर्बादियों की वजह से, इन लोगों के इन करप्शंस की वजह से जो इनकी वजह से फैले हुए हैं। मसलन अपने तौर पे हम और आप फैसले कर सकते हैं कि भाई ये जो इस वक्त पाकिस्तान में सियासतदान बैठे हुए हैं, ये हमारे चहेते हैं क्या? इन्हें हमले कराएं? मसलन पाकिस्तान पे 10 साल ज़ियाउल हक ने हुकूमत की, वो अवाम लेकर आई थी उसे, किस कौन लेकर आया, किसने हुकूमत करवाई उसके ज़रिए, किसने पैसे दिए उसको? अमेरिका ने दिए हैं, और किसने दिए हैं? अच्छा, अमेरिका मज़े की बात है पाकिस्तान से कह रहा है तुम्हारी वजह से तालिबान मजबूत हो रही है तुम्हारी। अब तो तालिबान बनाई किसने थी? तुमने बनाई तालिबान? हमने बनाई, कायदा तुम्हारी बनाई हुई है, तालिबान तुम्हारे में डॉक्यूमेंटेड है सब कुछ। तो पाकिस्तान किस मुंह से आकर यहाँ पे कह रहा है? जो इन्होंने नुकसान करवाए हैं वो नाकाबिले तलाफी नुकसान है। यानी मेरे नज़दीक 20 करोड़ इंसानों के 30 साल ज़ाया हो जाए, इसकी कीमत $33 अरब है। सिर्फ इतना काउंट कर लें कि आखिरी 15-20 साल में जितने लोग मरे दहशतगर्दी की जंगों के अंदर वो कितने हैं। जितना जितना पाकिस्तान की आवाम का नुकसान हुआ है वो कितना है। छोटी छोटी बातें इंसान काउंट कर रहे हैं, देखते हैं पता नहीं कहां से कहां बात पहुंच जाए। ये जो गवादर की पोर्ट का इशू है और मुख्तलिफ तरह की करप्शन का इशू है और ये और वो, इंसान कहीं से कहीं पहुंच जाता है। मैं सिर्फ एक छोटा सा एक पॉइंट आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, एक ज़माना जो मुझे अभी ईयर वाइज तो याद नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए कि उस वक्त $1.60 का होता था एक ज़माना, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो वो जब $60 होता था तो उस ज़माने में सेनेट ने एक रिपोर्ट दी, पाकिस्तानी सेनेट ने कोई रिसर्च करवाई उन्होंने, और उन्होंने रिपोर्ट दी कि पाकिस्तान में जो हम अपनी रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं, मसलन किनू उगे मार्केट तक नहीं पहुंचे सड़ गए, फल उगे मार्केट तक नहीं पहुंचे सड़ गए, सही है, मसलन ये वेस्ट हो गया, सही। अच्छा आपने टेक्सटाइल में एक प्रोडक्ट बनाई है जिसकी मार्केट वैल्यू फर्ज करें ऐसे ही मैं कह रहा हूँ 100 रुपये, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में अगर थोड़ा सा चेंज ले आते 300 रुपये हो जाती, ये आपने अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी। तो उस सेनेट की रिपोर्ट में आया कि पाकिस्तान हर साल 600 अरब रुपए वेस्ट कर रहा है, 600 अरब रुपए उस जमाने के इक्विवेलेंस में 10 अरब डॉलर बन रहे थे, 10 अरब डॉलर ये पाकिस्तान अपने हाथ से वेस्ट कर रहा था। अच्छा ये पाकिस्तान अपने हाथ से वेस्ट क्यों कर रहा था? इनएफिशिएंट करप्ट गवर्नमेंट्स की वजह से, ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम करप्ट है, गवर्नमेंट का सिस्टम करप्ट है, इनकी वजह से ये 10 अरब डॉलर का इक्विवेलेंट वेस्ट हो रहा था। उस टाइम पर हम आईएमएफ से लोन ले रहे थे 2.5 अरब डॉलर, सही है, यानी हम अपने सिस्टम के इनएफिशिएंट होने की वजह से 10 अरब डॉलर वेस्ट कर रहे थे और 2.5 अरब डॉलर के लिए आईएमएफ के सामने सर झुका रहे थे। ये वो रियलिटीज हैं जिनमें हम लोग इस वक्त फंसे हुए हैं। इन लोगों ने किस तरीके से नुकसान पहुंचाया, एक सादा सा नुकसान पहुंचाने का तरीका, अब देखिए, अब मैं इसको सिर्फ एक तरह से अर्ज कर सकता हूँ आपकी खिदमत में। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा, उनके एक साहब मुझसे बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपके ख्याल में IMF और वर्ल्ड बैंक ने हमें नुकसान पहुँचाया? कहने हाँ नुकसान पहुँचाया। तो उनका इदारा IMF और वर्ल्ड बैंक से बहुत क्लोजली रिलेटेड इदारा है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि उनका नाम मेरे नाम के साथ फ़ौरन लग जाएगा, लग भी चुका हो बहर उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो उनका इदारा बहुत कोऑर्डिनेट, तो मैंने कहा आपके ख्याल में इसने नुकसान पहुँचाया? कहने हाँ नुकसान पहुँचाया। मैंने कहा कैसे नुकसान पहुँचाया, आप साबित करें। कहने लगे देखिए बहुत सादा सा काम है, आप ये बताइए कि पाकिस्तान में आखिरी 40 साल में कौन सा बड़ा डैम बना है? नहीं बना। कहने के देखिए बहुत सादा सा काम है, आपको किसी भी मुल्क को डुबोना हो उसमें बिजली का कोई बड़ा मंसूबा ना बनने दें, खत्म हो गया, मुल्क डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि बिजली होगी तो इंडस्ट्री चलेगी ना, बिजली नहीं होगी इंडस्ट्री नहीं लगेगी, इंडस्ट्री नहीं लगेगी बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी नाम नहीं बढ़ेगी, नाम नहीं बढ़ेगी तो मुल्क वैसे ही खाली हो जाएगा। छोटा सा एक काम कर लें, बिजली ना बनने दें। अच्छा आप जाके पाकिस्तान का रिकॉर्ड देख लीजिए कि क्या क्या करके, अच्छा बिजली ना बनने के लिए क्या करें, छोटा सा एक और काम कर लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के ऊपर एक करप्ट आदमी बिठा दें, पूरी ब्यूरोक्रेसी को करप्शन में डाल देगा, सारे सिस्टम को डुबो देगा, बिजली नहीं बनेगी, बिजली नहीं बनेगी मामला वैसे ही आपका ख़त्म हो जाएगा। एक और साहब थे सिंध गवर्नमेंट के अंदर, सिंध गवर्नमेंट के अंदर मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा अल्टरनेट एनर्जी के बारे में, अब हम मैं ख़त्म करता हूँ ताकि हम सवाल पे जा सकें। अल्टरनेट एनर्जी के बारे में मैंने उनसे पूछा भाई पाकिस्तान में इसका क्या रुझान रहेगा, काफ़ी कई साल पहले की बात है, अभी तकरीबन 10 साल पहले की बात है। तो मुझसे वो सिंध के ऑल्टरनेट एनर्जी के मिनिस्टर थे, तो मैंने उनसे पूछा यहाँ पे इसका क्या रुझान रहेगा, और मसलन एक आइडिया मैंने दिया कि ये आइडिया आपको फिजिबल लगता है क्या ऑल्टरनेट एनर्जी का? कहेंगे हाँ बिल्कुल फिजिबल लगता है। तो मैंने कहा कि भाई आप माशाल्लाह आप तो मिनिस्टर हैं, आप इसको फॉलो कर लें। कहेंगे मेरी मिनिस्ट्री, मुझे अगर कोई रिपोर्ट लिखवानी होती हो तो मैं वर्ल्ड बैंक से बंदा कर्ज लेता हूँ, मेरी मिनिस्ट्री में कोई बंदा रिपोर्ट लिखने के काबिल नहीं है। जब आप ब्यूरोक्रेसी को इन एफिशिएंसी के इस लेवल पर ले आएंगे ये मुल्क तरक्की करेगा क्या? काश कोई टाइम आए जब पाकिस्तान में इस टाइप के लॉसेस का कोई अमेरिका से हिसाब ले कि तुमने हमें कितने नुकसान में डाला है। मेरा अपना ये ख्याल है कम से कम अमेरिका जो डायरेक्टली जिम्मेदार बनेगा, कम अज कम भी बनेगा, वो अयूब खान के ज़माने से बनेगा, ज़ियाउल हक़ के ज़माने से कम से कम जिम्मेदार बनेगा। उससे पहले भी जिम्मेदारी इनडायरेक्टली आएगी, अयूब खान के ज़माने को इसलिए कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान उस टाइम में इनको ज्वाइन करके बैठा था, अमेरिकन एग्रीमेंट्स को, लेकिन डायरेक्टली जिम्मेदार आएगा जियाउल हक के जमाने से, जब जियाउल हक बैठा ही सिर्फ अमेरिका की सुपरविजन की वजह से था। और उस वक्त से अब कितना अरसा हो गया आप उसको शुमार कर सकते हैं। तो ये लंबी कहानी है, ये $33 बिलियन का काम नहीं है। अब अमेरिका क्या करेगा इसको रोकने के बाद, उनके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्योंकि हमारी कौम अपने पाँव पर खड़े होने को तैयार नहीं है। अगर ये सब लोग अपने पाँव पर खड़े होने को तैयार हो जाए, अमेरिका कुछ नहीं कर सकता है। पाकिस्तान की पोजीशन उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है जो ये लोग कुछ कर पाएंगे, लेकिन चूंकि पाँव पर खड़े होने को तैयार नहीं, लिहाजा कमज़ोरी आती है। बहरहाल और भी बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सवालात के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद का।